संसार में कुशलता पूर्वक निर्वाह का अर्थ क्या हुआ? तो उसका अर्थ यह हुआ कि हम संसार के लिए अनुपयोगी न रहें और एक शरीर जो संसार का ही छोटा सा नमूना है, ये शरीर भी संसार ही है, जो बन जाता है, बदल जाता है, बिगड़ जाता है, मिट जाता है, उसी का नाम संसार है। तो एक छोटा सा नमूना जो है संसार का, जो हमारे पास है ऐसा लगता है, तो उसकी आसक्ति, उसका भार, उसकी पराधीनता अपने में न रहे, ऐसा कौन सा तरीका है? स्वामी जी महाराज ने बोलचाल की भाषा में बहुत ही सहज उपाय बता दिया हम लोगों को और ये कहा कि संसार सेवा का क्षेत्र है, उससे जो कुछ अपने को मिला हुआ सा लगता है वो सब उसकी सेवा में लगा दो और अपने लिए उसको पसंद ना करो तो बहुत ही कुशलता पूर्वक निर्वाह हो जाएगा। जिन लोगों ने शरीर और संसार की एकता को मानकर शरीरों को संसार की धरोहर मानकर उसकी सेवा के लिए अर्पण कर दिया, उन पर एक शरीर को संभालने का भार नहीं रहा। तो जहां भौतिकवाद की चर्चा होती है, भौतिक विकास होना चाहिए, तो उसमें बहुत बढ़िया सुझाव महाराज जी ने दिया कि जगत की सत्ता अगर तुम स्वीकार करते हो तो एक शरीर जो तुम्हारे पास दिखाई देता है यह भी जगत ही है। शरीर और संसार में भेद मत मानो और एक छोटे से संसार के लिए बृहद संसार को हानि मत पहुंचाओ। भौतिक विकास का मूल मंत्र है, बड़ा रहस्य है इसमें। एक शरीर की सुरक्षा के लिए अनेकों शरीरों के हित को न देखना, एक शरीर को अपना मानकर अनेकों को पराया मानना, यही भूल है कि जिससे हम शरीर और संसार के संबंध का सुंदर निर्वाह नहीं कर पाते। और जिन लोगों ने शरीर और संसार की एकता को मान करके शरीरों को संसार की सेवा में लगाया, उनका जीवन कैसा हो गया? तो उनकी आवश्यकता संसार ने अनुभव किया और वे स्वयं शरीर तथा संसार की आवश्यकता से मुक्त हो गए। तो जगत को आपकी जरूरत पड़े, जगत आपके शरीर को अपनी वस्तु मानकर उसकी रक्षा करे, उसका पोषण करे, उससे काम ले, उसको संभाले, और आप स्वयं सेवा का अवसर खत्म होते ही जब अकेले हो जाएं, तो शरीर और संसार के भास से मुक्त हो जाएं। जगत को शरीर की जरूरत रहे और मुझे अपने लिए जगत की आवश्यकता न रहे, शरीर की आवश्यकता न रहे, शरीर का भार मुझ पर न रहे, उसकी जिम्मेदारी मुझे न ढोनी पड़े और उसकी खातिरदारी के लिए दूसरों के अधीन न होना पड़े, इसको स्वामी जी महाराज ने भौतिक विकास बताया। आपके पास जो एक शरीर है उसकी आवश्यकता को समाज अपनी आवश्यकता मान ले और उसको पूरा करने के लिए समाज लालायित रहे, इसको स्वामी जी महाराज ने भौतिक विकास बताया। और आप एक शरीर को अपना मानकर उसकी आसक्ति में फंसे रहें और ये आशा करें कि कुटुंब परिवार पति पत्नी बाल बच्चे माता पिता नाता रिश्ता अड़ोसी पड़ोसी सब मिल करके मेरे इस एक शरीर की आवश्यकता पूरी करते रहें, तो आप चाहे कि सब सहायता दें और संसार आपकी ओर से बेरुखाई का व्यवहार करे, तो इसके समान और कोई काला समय सम्मानित व्यक्ति का हो सकता है? जे? हम चाहें कि आप मेरी खातिर करें, मेरी मदद करें, मुझको वस्तु दें और आप मेरी ओर मुखातिब न हो, आप मेरी उपेक्षा करें, तो मैं संसार को पसंद करूं और संसार मेरा तिरस्कार करे। इस जीवन को देखो कैसा लगता है, और आपके पास जो शरीर है समाज उसको अपनी वस्तु मान करके उसकी रक्षा में सेवा में लालायित रहे और आप अपने लिए उस शरीर की आवश्यकता अनुभव न करें। इस जीवन को देखो, दोनों में कौन सा पसंद आएगा, पहला कि दूसरा? जी दूसरा। तो मैं क्या बताऊं, मानव सेवा संघ के सत्संग के प्रकाश में यह बात बहुत ही स्पष्ट रूप से विदित हो गई मुझे कि संसार में कुशलता से रहना है तो भी और संसार के बंधन से मुक्त होकर अविनाशी जीवन से अविनाशी परमात्मा से अभिन्न होना हो तो भी सत्संग की बड़ी भारी आवश्यकता है। अगर आप संसार से लेने की आशा करेंगे तो उसकी पराधीनता से कभी मुक्त नहीं हो सकते, क्योंकि आशा में ही तो बंधा है व्यक्ति, वस्तु तो हमेशा से छूटी हुई है, वस्तु तो है ही नहीं, आपके भीतर घुस ही नहीं सकती, प्रवेश कर ही नहीं सकती, तो उसकी आशा में ही व्यक्ति बंध जाता है। और प्रकृति की इतनी उदारता है, शरीर जो हम लोगों को मिला साधन सामग्री के रूप में संसार के बंधन से मुक्त होने के लिए, तो उसको प्रकृति ने ऐसा बनाया कि एक बार थोड़ा सा उस पर ध्यान दे करके कुछ समय के लिए उसकी सेवा कर दो तो कई घंटों के लिए व्यक्ति फ्री रहता है उस शरीर को लेकर सेवा प्रवृत्ति के द्वारा पुराने रागों को निवृत्त करने के लिए और शांति संपादन में शरीरों से तादात्म तोड़ने के लिए और उनकी शरीरों की असंगता में अविनाशी जीवन के अनुभव के लिए काफी स्कोप है, खूब समय दिया गया है। 24 घंटे के समय को ठीक प्रकार से बांट करके आप देखिए तो जिसने शरीरधारी बनाया हम लोगों को और जिसने इस प्राकृतिक पदार्थ के निर्वाह का इंतजाम किया संसार में, उसने ऐसा नहीं किया कि 24 घंटे हम लोगों को शरीर के साथ उलझे रहना पड़े, ऐसा नहीं बनाया। एक बार एक समय स्वास्थ्य कर हित कर निष्प्रिय भाव से शरीर की सेवा कुछ देर के लिए कर दो तो कई घंटों के लिए इसकी ओर से फ्री होकर हम लोग इसका उपयोग साधन सामग्री के रूप में कर सकते हैं। अपनी ही भूल से उसी को प्रधानता देकर उसी के पीछे पड़े रहने में उसी के माध्यम से जगत के सुख भोग का इंतजाम करते रहने में बहुत सारा समय जीवन का निकल गया। और अब क्या हो गया, कल एक चिट्ठी मेरे पास आई, मैं उत्तर दे रही थी तो उन सज्जन को मैं 1937 से जानती हूँ, जब वे 17-18 वर्ष के युवक थे। अब रिटायर्ड हो गए हैं। बड़ा लंबा समय बीत गया। सारे लंबे समय के भीतर हमेशा ही जब कभी उनका पत्र आया तो समस्याओं से ही भरा हुआ आया। अब कई बच्चों के बाप हो गए हैं, सर्विस खत्म हो गई, रिटायरमेंट हो गया, अब भी उनकी समस्याएं ही समस्याएं हैं। तो जब पढ़ रहे थे तो पढ़ाई का इंतजाम नहीं था, समस्या थी। विवाह हो गया, बच्चे हो गए, तो बच्चों के लालन पालन पढ़ाई का इंतजाम नहीं था, उसकी समस्या थी। नौकरी खत्म होने लगी तो छूटने का डर हो गया, रिटायरमेंट हो जाएगा तो क्या करेंगे, तो वो समस्या हो गई। और अब तो वो घड़ी सिर पर आ ही गई, रिटायरमेंट हो ही गया, तो अब वो समस्या हो गई। अब कहाँ रहें, क्या करें। तो जिस दिन जीवन आरंभ किया था उस दिन भी समस्या थी। जिस दिन पढ़ाई लिखाई, नौकरी चाकरी, शादी ब्याह बाल बच्चे हो गए उस दिन भी समस्या थी, और अब सब छूट रहे हैं तब भी समस्या है। आफत है कि क्या है, जिंदगी है कि समस्या की देरी है, सोचो भला। तो बनाने वाले ने इसीलिए बनाया क्या कि सारी जिंदगी अपने लिए समस्याएं पैदा करते रहो और संसार से समस्याओं के समाधान का उपाय पूछते रहो और मांगते रहो और रोते रहो। ये तो मानव का जीवन नहीं है, बनाने वाले ने ऐसा नहीं बनाया। उत्तर देते समय बड़ा अजीब सा लगा कि इस भले आदमी को अब मैं क्या कहूं। अब शरीर थकित होने लग गया, अब तक जिस बल पर काम कर रहे थे वो बल भी खत्म हो गया। तो साधन की सामग्री जो मिली थी वो सामग्री के खत्म होने के दिन आ गए, और साधना के आधार पर उस सामग्री से फ्री होने की सामर्थ्य आप में नहीं आई। ठीक है ना। जिसने बनाया उसने साधन सामग्री किस लिए दी, तो उसने इसलिए दी कि अब तक तुम में शरीर धारण करके जगत में खेलने कूदने का शौक था, तो प्रकृति के विधान ने तुमको अवसर दे दिया। अब तक तुमने जीवन मुक्ति का पुरुषार्थ नहीं किया, तो प्रकृति ने अपनी उदारता से एक चांस और तुमको दे दिया। तो इस बार जो साधन सामग्री मिली है भाई, उसका ठीक उपयोग करके सामग्री के खत्म होने से पहले अपना काम तो पूरा कर लो। तो कौन सा काम पूरा कर लें? शरीरों की आसक्ति से मुक्त हो जाओ, समाज और प्रकृति के ऋण से उऋण हो जाओ, जीवन मुक्ति के आनंद से भर जाओ, जीवन दाता जन्म दाता परम प्रेमास्पद प्रभु के प्रेम रस से भर जाओ। उसके बिना तो समस्या हल होती नहीं है। एक साधिका एक बहन मुझसे किसी कारण से, क्या उनके मन में था मैं नहीं जानती हूँ, मेरे पास निश्चिंतता से बैठ करके धीरज से कहने लगी कि माता जी अब तो मैं जा रही हूँ। तो मुझे मजा आ गया, हमने कहा कि बड़ी खुशी की बात है भाई जाओ। अरे आप इतने सहज से कह देती हैं जाओ। तुमने कहा मुझे तो कोई नयापन लगता ही नहीं है, जाओगी कहाँ, अनेक बार यहाँ से जाना हुआ है और जा करके यहीं लौट करके आना हुआ है, तो हम काहे को घबराएं। जाना चाहती हो जाओ, जाओगी कहाँ, इस भौतिक सीमा के बाहर जाना तो होगा ही नहीं, तो मुझे परेशानी क्या है, तुम जाना चाहती हो जाओ, फिर लौट करके आ जाओगी, यही हमको क्या करना है, सोच के देखो न। अगर संसार से जो कुछ लिया है हमने, उस पर से अपना अधिकार नहीं उठाया, उससे व्यक्तिगत सुख भोगना ना पसंद नहीं किया, अपने पास जो कुछ बचा खुचा रह गया है उसको ले करके सधन्यवाद संसार की सेवा में अर्पण नहीं किया तो इसका राग मिटेगा नहीं, इसका आकर्षण खत्म नहीं होगा, तो अपने ही में विद्यमान अविनाशी जीवन की अभिव्यक्ति कैसे होगी भाई। तो कदम तो यहीं पर रुका रहता है और हम अविनाशी जीवन की कल्पना करते रहते हैं। काम नहीं कर रहा आए वो धोखा दे। आप शांति से सुनिए, सुनाई दे रहा होगा और पीछे न सुनाई देता हो तो उठ करके आगे चले आइए। बहुत सोचने की बात है और आप कहेंगे कि नाम लेने को तो सिखाया ही नहीं, ध्यान करने को सिखाया ही नहीं, व्रत उपवास करने को सिखाया ही नहीं, तो यहाँ तो कोई साधना ही नहीं सिखाई गई। ऐसा किसी किसी का ख्याल हो सकता है। अभी मुझे एक पारसी लेडी मिली थी, उनकी लड़की ने एक सनातन धर्मी लड़के से ब्याह किया तो उसी संबंध में वो संधिनी के साथ मेरे पास मिलने के लिए आई। तो ऐसे ही सूत्र हमारे कमरे में जगह पर टंगे हुए थे, सत्संग का प्रोग्राम चल रहा था तो दो चार सूत्रों को पढ़ करके कहने लगी कि ये तो बहुत अच्छी चीज मालूम होती है। तो मैंने कहा हाँ अच्छी चीज है, ठीक है, तो मुझे मिल सकती है क्या? तो मैंने मंगा के उनको दे दिया स्टॉक में से। हमने कहा दे दो इनको, ले लिया उन्होंने। फिर कहने लगी कि बहन जी तो हम आश्रम में आएंगे, आपका सत्संग सुनेंगे और मैं भी साधना कर रही हूँ। तो हमने कहा बहुत अच्छी बात है। हिंदी तो नहीं बोल पाती थी, ज्यादा अंग्रेजी अंग्रेजी बोल रही थी, बहुत पढ़ी लिखी महिलाएं थी सब। तो कहने लगी कि देखिए तो मैं साधना कर रही हूँ पहले, और सचमुच उस दिन उनको जलपान और चाय ये सब दिया गया तो लिया नहीं, उन्होंने कहा कि मेरा व्रत है। तो मैंने सोचा कि लड़की का ब्याह कर रही है, कुछ व्रत उपवास कर रही होंगी, तो हमने कुछ कहा नहीं। तो महिला कहने लगी मुझसे कि मैं उपवास कर रही हूँ और पहले मैं चाय पीकर करती थी, अन्न और फल नहीं लेती थी, अब मैंने चाय छोड़ दिया है, केवल जल पीकर कर रही हूँ। और बहन जी मेरा ऐसा विचार है कि जल पी करके व्रत करना जब मेरे लिए सच जाएगा तो उसके बाद मैं निर्जला करूंगी, तो इससे काम तो ठीक बनेगा ना, तो हम ऐसी साधना कर रहे हैं करेंगे। अब उस महिला को मैं क्या कहूँ, मैं कुछ कह नहीं सकी, उसको हतोत्साह भी नहीं करना था मुझे, और पारसी ढंग की साधना किस तरह की होती है मुझे परिचय भी नहीं है। अब बीच में अगर मैं अपना कुछ लगा दूं तो बेचारी का गड़बड़ा जाए, इसलिए समय भी नहीं था, ज्यादा समझाया बुझाया नहीं मैंने। लेकिन भीतर भीतर मैंने सोचा कि महिला में दृढ़ प्रतिज्ञा तो बहुत अच्छी बात है भाई, अन्न छोड़ दिया, फिर फल छोड़ दिया, फिर चाय और दूध छोड़ दिया, अब दिन भर प्रातः काल से लेकर संध्या समय तक जल पी के रहती हैं। और उस दिन मुझसे कह रही थी कि इसकी लड़की उनकी यास्मिन कि इसका विवाह हो जाएगा, कन्यादान करने के बाद अब मैं ऐसा व्रत करूंगी कि जल भी नहीं लूंगी। तो मैंने उनसे कहा कि ठीक है, जितना आप तप कर सकती हैं भले करिए, लेकिन हठ करने की जरूरत नहीं है, शरीर को ज्यादा जरूरत पड़े तो दे देना, कह करके उनको मैंने विदा किया। लेकिन अपनी ओर से मैं ऐसा सोच रही हूँ कि आदमी अब देखिए उनके लिए कितना कठिन व्रत है, फिर भी उनको लगता है कि ये साधना है, ऐसा करने से सफलता मिल जाएगी, ऐसा वो सोच रही हैं। मैं तो ऐसा नहीं सोच रही हूँ, मैं ऐसा सोच रही हूँ कि शरीर को अपना मान करके उसको अन्न और जल के बिना तपाओ तो तप का फल तो होता है, बल बढ़ता है, मन संयमित होता है, लेकिन जिस शरीर को अन्न और जल के बिना आप तपा रहे हैं उसको अपना मानते रहिए, उसके उसके महत्व को जीवन में धारण करिए तो उस शरीर से असंग होते नहीं बनेगा। ये बात पकड़ में आती है जी? और शरीरों की ममता नहीं टूटे, उससे असंग होते नहीं बने, तो देहातीत जीवन की अभिव्यक्ति अपने लिए बहुत दूर की बात हो जाएगी। ऐसे ही इस विषय पर बहुत ही विचार करके देखने की बात है कि शरीरों को अपना न मानना, उनको साधन सामग्री मानना और जगत का मान करके जगत की सेवा में लगा देना बहुत मामूली बात मालूम होती है। जो लोग ऊंचे विचार और ग्रंथों के अध्ययन वाले और ऐसे ऊंचे ऊंचे सत्संग सुनने वाले लोग हैं, एक महिला मुझे मिली तो कहने लगी कि हाँ बहुत साधारण स्तर की बातचीत तो हो गई। तो मैंने मन में सोचा कि शरीरों को अपना न मानना, जगत के साथ उसके संबंध को जान करके जगत की सेवा में उसको लगाना, यह अगर मामूली बात है और इसको मामूली बात जान करके छोड़ दो और जिसको विशेष साधन समझते हो उसमें अपने को लगाओ, तो लगाते 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 कितना समय बीत जाए, साधना कभी पक्की हो नहीं पाएगी। सोच करके देखो, तो मामूली बात नहीं है, बहुत जोरदार बात है। अपना न मानना, अपने लिए न मानना, जिस उद्देश्य से यह सामग्री मिली है उस उद्देश्य की पूर्ति में इसको लगा देना, इतनी जोरदार साधना है कि जिसने कर लिया वो पार पा गया। हम लोगों को भी इस दृष्टि से बहुत ही सावधान रहना चाहिए। अब उसके आगे की बात देखो। अब क्या कहते हैं अनुभवी संत? यह कहते हैं कि शरीरों को लेकर समाज के काम आने लग जाओ तो प्रकृति, परमात्मा, समाज इतने उदार हैं कि जितना तुम अपनी ओर से देना पसंद करते हो उससे कई गुना अधिक वे तुमको दे देते हैं उसी समय तत्काल। ये तो मैंने देखा है, कई जगह है आश्रमों की स्थापना हुई है। स्वामी जी महाराज ने उन्हीं दिनों में कहा था और अब वो बातें मेरे सामने प्रत्यक्ष होकर आ गई। तो पहले पहल जिन सज्जन के मन में आया कि मेरा एक छोटा सा बगीचा है, उसमें दो कुएं हैं और इतनी सी जमीन है, तो आश्रम बनाने के लिए मैं उसका दान करूंगा, अच्छी बात है भाई, कर दिया उन्होंने। तो इतनी सी छोटी सी जमीन, एक छोटा सा बगीचा उन्होंने अपनी ओर से दान किया सहज भाव से, इस उद्देश्य से कि वस्तुएं जो अपने पास आई हैं उन वस्तुओं में से कुछ अच्छे काम में लगना चाहिए, ऐसा भाव होता है आदमी का, ऐसा समझ के उन्होंने दान किया। और जैसे ही उस पर मानव सेवा संघ का वो बोर्ड लग गया और सत्संग वहां होने लगा, तो उसी साल 6 महीने के भीतर भीतर जितनी जमीन पहली बार दान करने वाले सज्जन ने दिया था, मैं समझती हूं कि उससे 10 गुना अधिक और मिल गया। किसी ने उसके पास का एक प्लॉट और किसी ने खरीद के उसमें जोड़ दिया, तो उसके बाएं दाएं उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम जहां तक जमीन मिल सकती थी उस नगर के लोगों ने मिला जुला करके उसको इतना बड़ा बना दिया कि वो उन सज्जन ने जितना दिया था उससे 10 गुना अधिक हो गई वो। महाराज जी ये कहते कि देखो भाई, समाज है, प्रकृति है, परमात्मा है, ये इतने उदार हैं कि तुम इतनी सी उदारता दिखाओगे तो ये ऋणी नहीं रहते हैं किसी व्यक्ति के, ये उससे बहुत अधिक उदारता तुम्हारे साथ कर देते हैं, भर देते हैं। तो अब हमको क्या करना चाहिए? जो मैं आपकी दृष्टि में लाना चाहती हूँ वो ये बात है कि शरीर और संसार के संबंध के निर्वाह में, सेवा के व्रत में, आहुति देते समय, भेंट पूजा चढ़ाते समय, ज्ञान के प्रकाश में इतने सावधान रहो कि तुम्हारी सेवा की भावना के बदले में जो प्रकृति, समाज और परमात्मा तुम्हारी सेवा करने लगे तो तुम कर्तापन के अभिमान में मत फंस जाना। ये खास बात हो गई, मैं बड़ा उदार, तो समाज जब तुम्हारी सेवा करने लगे तो अधिक अधिक लेने के लोभ में मत फंस जाना। ऐसा होता है, मैंने तो बहुत ही शुष्क और कठोरता के स्तर से साधना के जीवन को आरंभ किया, तो कहां कहां फंसावट आती है, कहां कहां व्यक्ति अपनी दबी हुई दुर्बलताओं के का शिकार बन जाता है, मुझको मालूम है, मैंने देखा है, मैंने अपनी दशा का अध्ययन किया है। और आप भाई बहन भी कहीं इसके शिकार न हो जाएं, आप बच जाएं, इसलिए मैं अपना अनुभव आपको सुना रही हूं। समाज की उदारता, आप बहुत भाई बहन यहाँ ऐसे बैठे हैं जो समय समय पर आ करके पूछते रहते हैं, बहन जी कोई सेवा बताइए, कोई जरूरी काम हो तो बताइए। तो मैं अपने साधकों को सावधान करती रहती हूँ, देखो भाई, समाज जब उदारता पूर्वक तुम्हारी सेवा करने लगे, तुम्हारे में विश्वास करके, तो आती हुई अनुकूलता को देखकर अपनी जरूरतों को बढ़ाते मत जाना, नहीं तो पहले जितने ऋणी थे उससे अधिक ऋणी बन जाओगे, क्योंकि परिश्रम करके कमाया हुआ पैसा जब आदमी खर्च करने चलता है तो जरा सोच समझ के खर्च करता है, कम से कम में काम चले ऐसा सोच के खर्च करता है। और जब समाज आकर के बरसाने लगता है उदारता पूर्वक, ये भी आपकी सेवा में ले लीजिए, ये भी आपकी सेवा में ले लीजिए, उस समय साधक अगर अपनी जरूरतों को बढ़ाता चला जाए, शरीर को आराम देने की सुविधाओं को अधिक से अधिक लेता चला जाए, तो वो फंसेगा कि छूटेगा? जी फंसेगा। हुआ है ऐसा कई बार, मैंने अपने भीतर इस प्रकार से समाज सेवा के बदले में बिना मेरे मांगे मेरे पास वस्तुएं आ रही हैं तो इनका उपयोग करने में अपने को हिचकना नहीं चाहिए, इस अनुकूल परिस्थिति के भीतर अपनी बढ़ती हुई लालच के, लालच कहूं तो थोड़ा छोटा ही शब्द बनेगा, लिप्सा कहूं तो और ज्यादा चोट लगेगी दिल पर, तो ऐसे चोट लगाने का काम मैंने किया है, सोच विचार करके, जान बुझ के कि अपने को अपमान लगेगा, थोड़ा धक्का लगेगा तो सावधानी रहेगी। इसलिए महाराज जी ने कहा कि शरीर और संसार के सुंदर निर्वाह के लिए बढ़िया से बढ़िया बात है कि इन दोनों को तुम अपने लिए मत मानना, ये साधन सामग्री है, संसार की वस्तु है, सेवा में लगाना ये पहला कदम हुआ, और की हुई सेवा के बदले में अपने लिए शरीर और संसार से कुछ पसंद मत करना, ये ज्ञान की बात हुई। ज्ञान के प्रकाश को लेकर के सेवा के क्षेत्र में आदमी को घुसना चाहिए। जगह जगह है मानव सेवा संघ की शाखाएं बनी हुई हैं, कई शाखा के सत्संगी भाई बहन यहाँ उपस्थित हैं। तो जब उनके यहाँ सत्संग का समारोह होता है तो कहते हैं कि बहन जी कोई सेवा प्रवृत्ति शुरू करा दीजिए तो बहुत अच्छा रहेगा, जन समाज का हित होगा। तो मैं कहती हूँ कि महाराज जी ने मुझको ऐसा दृष्टिकोण दिया कि देवकी जी पहले सही सेवक बनाना, तो सेवक सही बन जाएगा तो उसके द्वारा तुम्हारे किए बिना बढ़िया बढ़िया सेवा कार्य होने लग जाएंगे। तो बाहर से सेवा कार्य दिखाई देता हो और भीतर से सेवा करने वाले में सुख लोलुपता बढ़ती जाए, कर्तापन का अभिमान बढ़ता जाए, तो उसके द्वारा किए गए काम से अगर उसी का कल्याण नहीं हुआ तो उसकी सेवा प्रवृत्ति से जगत का उद्धार हो जाएगा जी? नहीं होगा। तो इसका अर्थ ये नहीं है कि आप लोग जो सेवा कार्य करना शुरू किए हैं इसे छोड़ के बैठ जाएं, ये अर्थ नहीं है। अपने पास सामग्री है तो सामग्री का उपयोग किए बिना आप छूटेंगे कैसे? तो जीवन काल में उपयोग कर लेना है, नहीं तो कुछ लोग आखिरी घड़ी तक के लिए संभाल कर रखते ही रहते हैं तो पीछे चल के क्या होगा। तो मैं सोचती हूँ कि अगर जीवन काल में मैंने उसका सदुपयोग नहीं कर लिया तो मेरे मरने के बाद कौन गारंटी है कि सदुपयोग होगा? मरने के बाद अगर और कुपात्र के हाथ में पड़ गया तो दुरुपयोग होगा कि नहीं होगा? तो इसलिए प्राप्त सामग्री को सेवा के कार्य में लगाना अनिवार्य है, लगाए बिना छुट्टी मिलेगी नहीं। लेकिन कार्य आरंभ करने से पहले कर्ता को ज्ञान के प्रकाश में अपने को निष्प्रिय बना लेना बहुत जरूरी बात है। प्रतिदिन प्रातः काल सोकर जगते ही व्यक्तिगत सत्संग के रूप में अकेले में बैठ करके अपने संबंध में जब विचार करिए तो ज्ञान के प्रकाश में जीवन को देखना, प्रभु विश्वास में उनकी शरणागति लेकर समर्पण भाव लेकर शांत रहना, देहातीत जीवन की अनुभूति के लिए शरीरों की असंगता में विश्राम लेना, यह सब आपका व्यक्तिगत सत्संग हो गया, यह सब आपका नित्य नियम हो गया। उसके बाद जब कर्म के क्षेत्र में सेवा करने चलें तो इन मौलिक बातों को हर दिन पाठ दोहराने की तरह दोहरा करके चलें। जो कुछ मेरे पास है, मेरा व्यक्तिगत कुछ नहीं है, सब संसार का ही है और संसार को देना है वापस, और इस भलाई के बदले में समाज जो मुझे अनुकूलता देगा उसका भी भोगी नहीं बनना है, और फिर कर्तापन के अभिमान से फ्री रहना है। तो सेवा करेंगे उसके बदले में कुछ चाहेंगे नहीं, और बिना मेरे चाहे बिना मेरे मांगे समाज बहुत कुछ देगा तो उसके भोगी नहीं बनेंगे। इतनी सावधानी भीतर भीतर ले करके आप सेवा के क्षेत्र में प्रवृत्त होइए और खूब प्रेम पूर्वक कीजिए। और मैंने तो ऐसा पाया है, कैसा कि इतना स्पष्ट दृष्टिकोण लेकर सेवा के क्षेत्र में आपने प्रवेश किया तो तन से मन से पूरी लगन के साथ जो सेवा कार्य आपके सामने आया है वो कर रहे हैं, उसी बीच में ज्ञान के प्रकाश में आपको याद आ गया कि इसमें से मेरा कुछ नहीं है और प्रभु विश्वास के भाव में ध्यान में यह आ गया कि क्या जाने मेरे ही भीतर का राग मिटाने के लिए मेरे परम हित चिंतक मेरे प्यारे प्रभु ही सेव्य बनकर आ गए हैं, सेवा स्वीकार कर रहे हैं। जरा सी देर के लिए कॉन्शस लेवल पर चेतना के स्तर पर ये बात आई नहीं कि उसी समय इतनी सरसता इतना रस तरंग जीवन में भर जाता है कि शरीर जहां के तहां ज्यों के त्यों शिथिल जैसे के तैसे रह जाता है। सेवा करने वाले के भीतर का यह भाव और उसकी यह सरसता बाहर भी फैल जाती है और जिनकी सेवा आप कर रहे थे उनको भी इतना रस आ जाता है कि वे भी जहां के तहां जैसे के तैसे बैठे के बैठे रह जाते हैं, देखते के देखते रह जाते हैं। आनंद बरसता रहता है दोनों ओर से, और काम करने वाले और सेवा लेने वाले दोनों उस रस के प्रभाव में आनंदित होते शिथिल जहां के तहां जैसे के तैसे रह जाते हैं। होता है ऐसा, मुझे बहुत अच्छा लगता है और इसी आधार पर मरणशील शरीर को लेकर नाशवान जगत में सेवा की प्रवृत्ति में लगे हुए साधकों की सेवा में मैं निवेदन करती हूँ कि भाई तुम्हारे व्यक्तित्व की रचना ऐसी विलक्षण है कि अभी अभी संसार के साथ जगत का एक अंश बनकर जगत के व्यवहार में लगे हैं आप, और उसी के भीतर व्यवहार में लगे हुए ही ज्ञान के प्रकाश में प्रभु विश्वास के प्रभाव में देहातीत आनंद का अनुभव कर सकते हैं। होता है ऐसा, सत्य है या है, नित्य जीवन का रस, परम शांति का रस, प्रभु प्रेम के भाव का रस, वही तो जीवन रस है। उसी के आधार पर हम भाई बहन अपनी सत्ता अनुभव कर रहे हैं। उसी से विमुख हो जाने के कारण जगत में जगह जगह ठोकरें खाते फिरते रह रहे हैं, जिनको पराया मानते हैं उनकी ठोकरें कड़वी लगती हैं, जिनसे मोह का संबंध माना है प्रभु के मंगलमय विधान से अपने निजी आत्मीय संबंधी कहलाने वाले भी ठोकरें देते हैं, और धिक्कार है मेरी जड़ता को कि चेतना नहीं आती। ऐसा होता है कि नहीं? जी होता है। क्या दुर्दशा करके बैठे हैं देखो तो सही। ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, लड़के नाराज हो जाएंगे, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, बहू बुरा मानेगी। अरे बेटे बहू तुम्हारे पास आए थे तो माँ बाप बनने का राग मिटाने के लिए कि उनकी गुलामी में बंधने के लिए? जी सास बनी थी तो पराए घर की लड़की लाकर बेटी से अधिक उसको प्यार दे करके अपने राग से मुक्त होने के लिए कि उस पर अधिकार जमाकर उससे सेवा मांगने के लिए काहे के लिए सास बनी थी सोचो तो। बड़ा रहस्य है जीवन का, इतना प्रैक्टिकल है, इतना प्रैक्टिकल है कि अगर इन बातों पर ध्यान नहीं जाता, व्यवहार करने में अगर हम इतने सावधान नहीं होते तो ग्रंथों के जो महावाक्य हैं वे जीवन में सिद्ध होते हुए अनुभव में तो नहीं आते। पति बने थे पत्नी के राग से मुक्त होने के लिए कि उस पर अधिकार जमाने के लिए कि अपनी रुचि पूर्ति में उसको खुराक बनाने के लिए। पत्नी बनी थी पति के राग से मुक्त होने के लिए कि उसको अपनी खुराक बनाने के लिए। तो सत्संग तो ऐसा होना चाहिए कि जीवन के प्रत्येक पहलू को बिल्कुल साफ कर दे। मैंने जब मानव जीवन के व्यक्तित्व को वैज्ञानिक ढंग से पढ़ा था तो बड़े गौरव के साथ, बड़े गर्व के साथ कि मुझको बहुत जानकारी है, ट्राई डायमेंशनल थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी, मनुष्य के व्यक्तित्व के तीन विशेष पहलू, तीन डायमेंशन, कर्म, ज्ञान और प्रेम, और इस पर बड़ा विशद विवेचन और अनेक विद्वानों की जो लिखी हुई पुस्तकें हैं और सिद्धांत हैं, तो उलझ उलझ करके स्टूडेंट्स को उलझा उलझा करके कितना समय बिताया। संत के पास आकर के तो इतना सहज हो गया, इतना सहज हो गया कि अब तो थ्योरी के समर्थन और खंडन और मंडन की कोई जरूरत ही नहीं है। मनुष्य हो, जरा सी देर के लिए शांत होकर के बैठने में भीतर भीतर संसार चक्कर काटता है, उसके चिंतन से तुम्हें मुक्त होना है तो बस एक ही व्रत पर्याप्त है। मेरे पास संसार का दिया हुआ जो कुछ है, हे संसार, आपकी सेवा में अर्पित है, और बदले में तुम्हें क्या चाहिए भाई? तुम हमको दोगे तो उसके बदले में हम भी तो कुछ तुमको देंगे। तो नहीं, तुम मुझे तो आपसे कुछ नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि मेरा भरण पोषण करने वाला, मुझे भरपूर करने वाला, मुझे सब प्रकार से अपनाने वाला, मुझे निज स्वरूप से अभिन्न कराने वाला, मुझे जन्म जन्मांतर के ताप से मुक्त करके परम शीतल शांत प्रसन्न रसमय बनाने वाला मेरे भीतर है, मेरे पास है। तो हे विश्व रूप भगवान, अपने इस विश्व रूप के प्रलोभन से मुझे मुक्त करिए, अपने शांति स्वरूप में मिलाइए, अपने ज्ञान स्वरूप में मिलाइए, अपने प्रेम स्वरूप में मिलाइए। तो ये प्रार्थना बन जाएगी, काम हो जाएगा। समय निकल गया, अब शांत हो जाइए।